आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने जोर देकर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने सरहद पार पाकिस्तान में बगैर किसी चूक के दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया। उन्होंने गैर मुल्की मीडिया को भारत की जानिब नुकसान का कोई मोतबर सबूत पेश करने का चैलेंज किया। डीआरडीओ और भारतीय फजाइया ने ओडिशा में बसरी हदूद से परे फिजा से फिजा में मार करने वाले अस्त्र मिजाइल का कामयाब तजुर्बा किया। हुकूमत नायाब जमीनी मकनातीस की पैदावार को फरोग देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी स्कीम को शुरू करने का मंसूबा रखती है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 22 माओनवाजों ने खुद सुपुर्दगी की। क्रिकेट में लॉर्ड्स टेस्ट में मेजबान इंग्लैंड की पूरी टीम भारत के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स में 387 रन बनाकर आउट हो गई। अब खबरें तफसील से। भारत ने हालिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरहद के नजदीक नहीं बल्कि सरहद पार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया। ये हमले बिल्कुल मुकर्रा अहदाफ पर दुरुस्तगी के साथ किए गए। भारतीय मुसल्ला अफवाज इस बात को जानती थी कि कौन कहां है और मिसाइल ने नहायत दुरुस्तगी के साथ ठिकाने को निशाना बनाया। ये बात आज चेन्नई में आईआईटी मद्रास में 62वें सालाना जलसे तकसीम असनाद से खिताब करते हुए कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कही। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में गलत मालूमात फैलाने के लिए गैर मुल्की मीडिया को तनकीद का निशाना बनाया और उन्हें चैलेंज किया कि भारत की जानिब किसी भी नुकसान के बारे में कोई मोतबर सबूत पेश करे। जनाब डोभाल ने जोर देकर कहा कि भारत की जानिब मामूली अदना शीशे को भी नुकसान नहीं पहुंचा।
We decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. We missed none. And it was precise to the point where we knew who is where. Entire operation was started at 1:05 and was over at 1:28.
कौमी सलामती के मुशीर ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के इंतजाम वाले जम्मू कश्मीर में लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों समेत दहशतगर्दी के कैंपों का खात्मा करने के लिए 23 मिनट में बिल्कुल दुरुस्त हमला करने के लिए भारतीय मुसल्ला अफवाज की सताइश की। जनाब डोभाल ने तासुब पर मबनी गैर मुल्की मीडिया के बयानिये की मजम्मत की और कौमी सलामती के मामलों पर जिम्मेदाराना तरीके से शवाहिद पर मबनी रिपोर्टिंग करने के लिए कहा। दिफाई तहकीक के भारतीय इदारे डीआरडीओ और भारतीय फजाइया ने देसी साख्त के अस्त्र मिसाइल की आजमाइशी परवाज आज कामयाबी से मुकम्मल की। बसारत की हद से परे सतह से सतह पर मार करने वाले इस मिसाइल का ओडिशा में सुखोई 30 एमकेआई प्लेटफॉर्म से कामयाब तजुर्बा किया गया। वजारत दिफा के मुताबिक मुख्तलिफ 2 मकामात पर तेज रफ्तार गैर इंसान बरदार हवाई निशानों के खिलाफ इसे दागा गया। दोनों मामलों में मिसाइलों ने बे इंतहा दुरुस्तगी के साथ अपने निशानों को तबाह किया। टेस्ट के दौरान सभी दूसरे सिस्टम्स भी बिल्कुल दुरुस्त काम करते रहे। इन कामयाब आजमाइशों ने स्वदेशी सीकर से तैयार करदा अस्त्र हथियार की दुरुस्तगी और काबिल एतबार कारकर्दगी की दोबारा तौसीक कर दी है। अस्त्र मिसाइल 100 किलोमीटर से ज्यादा मार करने की सलाहियत रखता है और ये पता लगाने के जदीद तरीन नेविगेशन निजाम से लैस है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, भारतीय फजाइया और इस मिसाइल के डिजाइन और तैयारी में शामिल सनत को इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। जनाब सिंह ने कहा कि स्वदेशी सीकर से बने मिसाइल का कामयाब तजुर्बा अहम दिफाई टेक्नोलॉजी की राह में बड़ा संग मील है। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने भी कामयाब आजमाइशी परवाज में शामिल सभी टीमों को मुबारकबाद दी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने नेशनल कैडेट कोर एनसीसी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म करार दिया जो मुल्क के नौजवानों के लिए मिसाली काम करता है। उन्होंने एनसीसी के साबिक कैडेटों को मुल्क के मजबूत सुतून करार दिया जो मुतनव्वो शोबों में तरक्की में सरगर्म तौर पर तावुन दे रहे हैं। वजीर दिफा ने नई दिल्ली में नेशनल कैडेट के साबिक कैडेटों की एसोसिएशन की मीटिंग की सदारत की। उन्होंने एतमाद का इजहार किया कि एनसीसी एए को मजीद तकवियत और समत अता करेगी। وزیر اعظم نریندر مودی ہفتے کے روز ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سرکار کے مختلف شعبوں اور تنظیموں میں ملازمت حاصل کرنے والے 51,000 سے زیادہ نوجوانوں کو تقرر نامے تقسیم کریں گے۔ وزیر اعظم اس موقع پر ملازمت حاصل کرنے والوں سے خطاب بھی کریں گے۔ پورے ملک کے 47 مقامات پر یہ 16واں روزگار میلہ منعقد کیا جائے گا۔ مرکزی حکومت کی وزارتوں اور شعبوں میں یہ تقرریاں کی جا رہی ہیں۔ ایک ملک ایک الیکشن سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے آج نئی دلی میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک میٹنگ کی۔ 39 اراکین پر مشتمل اس کمیٹی میں لوک سبھا کے 27 اور راجیہ سبھا کے 12 ممبران شامل ہیں۔ یہ میٹنگ 129ویں آئینی ترمیمی بل 2024 اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے متعلق قوانین ترمیمی بل 2024 کا وسیع طور پر جائزہ لینے کے عمل کے ایک حصے کے طور پر منعقد کی گئی تھی، جن کا مقصد لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں کے لیے ایک ساتھ الیکشن کرانا ہے۔ بی جے پی ایم پی 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 چودھری کی قیادت میں پینل نے اپنے جاری تبادلہ خیال کے حصے کے طور پر قانونی ماہرین کے ساتھ صلاح مشورہ کیا۔ میٹنگ میں سابق چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس جگدیش سنگھ کھیہر اور جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے ملک میں ایک ساتھ چناؤ کرانے کے معاملے پر کمیٹی کے سامنے پریزنٹیشن پیش کیے۔ بی جے پی کے ایم پی انوراگ ٹھاکر، کانگریس ایم پی پرینکا گاندھی واڈرا، سماجوادی پارٹی ایم پی دھرمیندر یادو بھی میٹنگ کے شرکا میں شامل تھے۔ ملک میں ایک ساتھ چناؤ کرانے کا نقطہ نظر کوئی نیا نہیں ہے۔ آئین کو اپنانے کے بعد 1951 سے 1967 تک ملک میں لوک سبھا اور سبھی ریاستی قانون ساز اسمبلیوں کے لیے ایک ساتھ چناؤ کرائے گئے تھے۔ البتہ 1968 اور 1969 میں کچھ ریاستی قانون ساز اسمبلیوں کی مدت سے پہلے تحلیل کیے جانے کے سبب ایک ساتھ انتخابات کے عمل میں رکھنا پڑا تھا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے آج نئی دلی میں جمنا کے احیاء پر ایک اعلی سطح کی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ دلی آلودگی کنٹرول کمیٹی ڈی پی سی سی کو آبی آلودگی کی روک تھام کے لیے سرگرم طور پر کارروائی کرنی چاہیے۔ انہوں نے جمنا کے لیے آلودہ پانی کو قابل استعمال بنانے کے سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ ایس ٹی پی کی صلاحیت کو 2028 تک 1500 ملین گیلن یومیہ کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر داخلہ نے جمنا میں ای بہاؤ میں اضافہ کرنے پر خصوصی توجہ دی اور کہا کہ اس معاملے پر اتر پردیش سرکار سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سبھی تینوں ریاستوں ہریانہ، دلی اور اتر پردیش کو جمنا کے احیاء کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ حکومت نے داخلہ سیکرٹری گووند موہن کو اگلے سال 22 اگست تک خدمات میں توسیع دی ہے۔ اس سے پہلے جناب موہن اس سال 30 ستمبر کو سبکدوش ہونے والے تھے۔ کابینہ کی تقررات سے متعلق کمیٹی نے جناب موہن کی خدمات میں توسیع کو منظور کر لیا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ حکومت ملک میں کمیاب ارضیاتی عناصر سے تیار ہونے والے مستقل مقناطیس ریئر ارتھ میگنیٹ کی تیاری کو فروغ دینے کے لیے 1,345 کروڑ روپے کی سبسڈی اسکیم لانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس بارے میں بین وزارتی مشاورت جاری ہے۔ یہ اطلاع آج نئی دلی میں بھاری صنعتوں کی وزارت کے سیکرٹری کامران رضوی نے ایک تقریب کے دوران دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسکیم کمیاب ارضیاتی آکسائڈز کو مقناطیس میں تبدیل کرنے کے لیے شروع سے آخر تک مدد کرے گی۔ اس کے علاوہ سبسڈی کے ذریعے کمپنیوں کو کمیاب ارضیاتی آکسائڈز کو مقناطیس میں تبدیل کرنے کے لیے پروسیسنگ مراکز قائم کرنے کی خاطر سرمایہ کاری میں آسانی ہوگی۔ یہ مجوزہ اسکیم ایسے وقت میں آ رہی ہے جب چین نے کمیاب ارضیاتی مقناطیس کی برآمدات پر بندشیں عائد کر دی ہیں، جس سے عالمی سپلائی متاثر ہوئی ہے اور الیکٹرانک گاڑیاں بنانے والوں پر اثر پڑا ہے۔ بھارت کے قومی شاہراہوں سے متعلق اتھارٹی این ایچ اے آئی نے غیر فعال فاسٹیگز کو بلیک لسٹ کرنے کی کارروائی تیز کر دی ہے تاکہ ٹول ٹیکس وصولی کا عمل حسب معمول جاری رہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی وزارت نے آج اپنے بیان میں کہا کہ غیر فعال فاسٹیگز الیکٹرانک طریقے سے ٹول وصول کرنے کے عمل کے لیے چیلنج پیدا کرتے ہیں۔ این ایچ اے آئی نے اس کام کے لیے وقف ای میل ایڈریس فراہم کیا ہے اور ٹول وصول کرنے والی ایجنسیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس طرح کے غیر فعال فاسٹیگز کی فوری اطلاع دیں۔ این ایچ اے آئی اس کے بعد فوری کارروائی کرے گی اور ان فاسٹیگز کو بلیک لسٹ کرے گی۔ چھتیس گڑھ کے نارائن پور ضلع میں 22 ماؤ نوازوں نے پولیس کے سامنے خود سپردگی کی۔ پولیس ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ رابنسن گوریا کے مطابق ان ماؤ نوازوں پر مجموعی طور پر 37,50,000 کا انعام تھا۔
कुल 22 माओवादियों ने नारायणपुर जिले में पुलिस के सामने आत्मसमर्पित किया है। इसमें मुख्य रूप से जो डीवीसी सुखलाल, जिसने कुतुल एरिया कमेटी को काफी समय से इंचार्ज रहा है, उसने सरेंडर किया अपनी वाइफ के साथ। बाकी एक डीवीसीएम, 3 ACM, 5 पार्टी मेंबर्स के रैंक के थे और बाकी आरपीसी एवं अन्य नक्सल सहयोगियों ने सरेंडर किया है।
खुद सुपुर्दगी करने वाले माओनवाजों को रियासती सरकार की बाजाबादकारी की नई पॉलिसी के तहत तरगीबात के तौर पर 50,000 रुपए फीकस और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। 3 जुलाई से शुरू हुई 38 रोजा सालाना अमरनाथ जी यात्रा पुरअमन तरीके से हजब मामूल जारी है। यात्रा अपने दोनों रास्तों जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम बेस कैंप और वस्ती कश्मीर के गांधरबल जिले के बालतल बेस कैंप से मामूल के मुताबिक जारी है। यात्रा का अख्तिताम 9 अगस्त को रक्षाबंधन पर होगा। अमरनाथ यात्रा के अकीदतमंदों की सलामती में इजाफे के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर जियो फेंसिंग निगरानी निजाम मुतारिफ कराया है। पेश है एक रिपोर्ट।
इस माह की 3 तारीख से जारी यात्रा के 9वें रोज आज शाम तक 1,65,000 से जायद यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। मुल्क भर से यात्री पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन के लिए कश्मीर आने पर अपने इत्मीनान और मसरत का इजहार कर रहे हैं। वो यहाँ हर किस्म के इंतजाम, सहूलियात और महफूज माहौल से मुतमईन हैं।
बाबा के दर्शन करके, और हम चाहते हैं हर साल दर्शन करने आए बाबा के।
बढ़िया लगा, बहुत अच्छी सुविधा, सारे कर्मचारी बहुत बढ़िया से।
पहली बार यात्रा करी मैंने, बहुत बढ़िया लगा और प्रशासन की बहुत बढ़िया व्यवस्था है और बाबा की कृपा सब पे बनाए रहे हैं।
इस साल जारी श्री अमरनाथ जी यात्रा में बड़ी तादाद में यात्रियों की शिरकत मुतवक्का है। आज सुबह जम्मू बेस कैंप से 6,400 से ज्यादा यात्री रवाना होकर कश्मीर खित्ते में मुतलका बेस कैंप पहुँच गए हैं। तारिक रातर, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर।
आज आबादी का आलमी दिन है। ये दिन हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है ताकि बढ़ती हुई आबादी की वजह से पैदा होने वाले चैलेंजों और मौके पर तवज्जो मरकूज की जा सके। ये आबादी से मुतालिक खदशात को दूर करने और एक पायदार मुस्तकबिल के लिए काम करने की याद दहानी है। इस साल आबादी के आलमी दिन का मौजू है माँ और बच्चे की सेहत और तंदरुस्ती के लिए हमल का मुनासिब वक्त और हमल के दौरान वक्फा। ये मौजू माँ और बच्चे की तंदरुस्ती के लिए, सेहतमंद नतीज के लिए मनसूबाबंद तरीके से वालदेन बनने की अहमियत को उजागर करता है। गुजरात के वजीर सेहत ऋषिकेश पटेल ने कहा है कि हुकूमत ने वडोदरा पुल हादसे की आला सतह जांच की है। जांच कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पुल के जोड़ का टूटना और बुनियाद का ढह जाना मुजपुर गंभीरा पुल हादसे की वजह बना। जनाब पटेल ने वडोदरा जिले के पदरा तालुके के मुजपुर में आज गंभीरा पुल के जाए हादसे का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ये बात कही। जनाब पटेल ने मजीद कहा कि जांच कमेटी 30 दिन के अंदर अपनी तफसीली रिपोर्ट पेश करेगी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में नामालूम बंदूकबरदारों ने कम से कम 9 मुसाफिरों को अगवा करके हलाक कर दिया। ये हमला जोब के नजदीक पेश आया जहां मुसल्ला हमलावरों ने मुसाफिर बसों को रोका, शनाख्ती कार्ड चेक किए और लोगों को चुन चुन कर गोली मार दी। क्रिकेट में लॉर्ड्स में खेली जा रही एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में इंग्लैंड की टीम 387 रन पर आउट हो गई। शुरुआती झटकों के बाद जो रूट ने 104 रन की बदौलत इनिंग्स को संभाला। ताहम जसप्रीत बुमराह ने 78 रन के इवज 5 खिलाड़ियों को आउट करते हुए 400 रन तक पहुंचने की इंग्लैंड की कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया। आखिरी खबरें मिलने तक भारत ने पहली इनिंग्स में 2 विकेट के नुकसान पर 80 रन बना लिए हैं। विंबलडन टेनिस में अब से कुछ देर पहले सेमीफाइनल मुकाबले में कार्लोस अल्कराज ने टेलर फ्रिट्स को हरा दिया है। इस तरह वो मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। आलमी नंबर 2 स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने 5वें दर्जे के खिलाड़ी टेलर फ्रिट्स को 4 सेटों में 6-4, 5-7, 6-3 और 7-3 से शिकस्त दी। आज देर रात दूसरे सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच का मुकाबला जैनिक सिनर से होगा। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने जोर देकर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने सरहद पार पाकिस्तान में बगैर किसी चूक के दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया। उन्होंने गैर मुल्की मीडिया को भारत की जानिब नुकसान का कोई मोतबर सबूत पेश करने का चैलेंज किया। डीआरडीओ और भारतीय फजाइया ने ओडिशा में बसरी हदूद से परे फिजा से फिजा में मार करने वाले अस्त्र मिजाइल का कामयाब तजुर्बा किया। हुकूमत नायाब जमीनी मकनातीस की पैदावार को फरोग देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी स्कीम को शुरू करने का इरादा रखती है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 22 माओनवाजों ने खुद सुपुर्दगी की। और क्रिकेट में लॉर्ड्स टेस्ट में मेजबान इंग्लैंड की पूरी टीम भारत के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स में 387 रन बनाकर आउट हो गई। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।